हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। एक बात ध्यान से सुन ले सिद्धार्थ, उस लड़की का यहाँ आना हर हाल में रोका जाएगा, और अगर वो आई तो उसकी जान जाना भी निश्चित है। हमें सबसे पहले ये मानना होगा कि सबसे बड़ी गलती हमारी ही थी कि हमने उस लड़की को पहचानने में देर कर दी। लेकिन याद रखना, हमारे परिवार की इज्जत से ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी नहीं। वहीं ये बात आकांक्षा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो तुरंत ही उठकर सिद्धार्थ के पास गई, उसका हाथ थामकर बोली, क्या बात है सिद्धार्थ, इस तरह कहाँ जा रहे हो? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो प्लीज़, लेकिन इस तरह से मत जाओ। ये सुनकर सिद्धार्थ रुक गया। उसने आकांक्षा को घूरते हुए कहा, मुझे कल के फंक्शन की तैयारी करनी है, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। वहीं आकांक्षा ने सिद्धार्थ के चेहरे पर उस अजीब से चुभन को साफ महसूस किया। वो थोड़ी घबरा गई थी। घबराकर उसने रणविजय की ओर देखा। रणविजय ने अपनी आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया और धीमे स्वर में कहा, उसके पास तुमसे शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे सच में उससे प्यार करती हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें सिर्फ उसके पावर और स्टेटस से प्यार है। आकांक्षा कुछ पल के लिए चुप हो गई। भले ही उसे उसके पावर और स्टेटस से प्यार था, लेकिन उसके मजबूत व्यक्तित्व और लोहे जैसे सख्त शरीर ने भी कहीं ना कहीं उसे अपनी ओर आकर्षित किया था। ये बात उसने मन ही मन स्वीकार की, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। फिलहाल उर्वशी खुराना ने बात संभालते हुए कहा, देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अमीर परिवार उस जैसी लड़की को अपने बराबर बैठाने की गलती करेगा, और वैसे भी यहाँ मौजूद सभी लोग उसके बारे में सच जानते हैं कि वो नाजायज़ है। ना उसका कोई नाम है, ना कोई पहचान। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की वहाँ तक पहुँच भी पाएगी। जो कुछ भी वो कर रही है वो सिर्फ अपने तथाकथित बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए है कि वो अच्छी ज़िंदगी जी रही है, लेकिन हमने उसे सीधा कर दिया है, अच्छी तरह से समझा दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो अब हमारे मामलों में दखल देने की कोशिश करेगी, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही दादी को पूरी तरह भरोसा दिलाया गया, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर शांत हो गई थीं। उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि उनके भेजे हुए लोग अपना काम कर ही देंगे, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। अब सभी को सिर्फ और सिर्फ कल के फंक्शन की तैयारी में लग जाना चाहिए था। वहीं मल्होत्रा मेंशन पूरी तरह से तैयार हो चुका था। सबने अवार्ड फंक्शन में मुंबई जाने का फैसला कर लिया गया था। झलक ने भी कुछ देर पहले ही फंक्शन में जाने का निश्चय किया था। वो आदित्य राणा के साथ प्राइवेट जेट में बैठकर फंक्शन के लिए रवाना हो चुकी थी। उधर अनामिका हल्की मुस्कान के साथ तैयार हुई और अपने पूरे परिवार को भी तैयार होने के लिए कह दिया, क्योंकि आज सभी का वहां जाना बहुत ज़रूरी था। आखिरकार आज का दिन झलक के लिए जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा दिन पूरे मल्होत्रा परिवार के लिए भी था। आरव जी भी पूरे आत्मविश्वास और जुनून के साथ उस फंक्शन में जाने के लिए तैयार खड़े थे। आज सिर्फ एक अवार्ड नहीं, बल्कि कई रिश्तों की सच्चाई और कई चेहरों का असली रंग सामने आने वाला था। हर साल देश की सबसे बड़ी बिजनेस संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन बिजनेस लीडर्स एक भव्य समारोह आयोजित करती थी। यही वो संस्था थी जो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान करती थी। एक एक करके मेहमान आने लगे थे। वे कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि देश के जाने माने उद्योगपति, निवेशक और कॉरपोरेट जगत के बड़े नाम थे। इस अवार्ड की खास बात ये थी कि ये केवल पैसे या मुनाफे के आधार पर नहीं दिया जाता था, बल्कि उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता था जिसने देश और समाज के लिए कुछ नया, बड़ा और प्रेरणादायक किया हो। अवार्ड सेरेमनी का नाम सुनते ही माहौल खुद ब खुद भव्यता से भर उठता था। समुद्र की लहरों के किनारे स्थित रोशनी से जगमगाता विशाल 5-स्टार कन्वेंशन हॉल इस खास शाम के लिए दुल्हन की तरह सजा हुआ था। प्रवेश द्वार पर लाल कालीन बिछी थी जिस पर देश के बड़े उद्योगपति, नामी निवेशक, चर्चित चेहरे और मीडिया की चमकती फ्लैशलाइट्स एक अलग ही शान बिखेर रही थीं। हर तरफ कैमरों की चमक, रिपोर्टर्स की उत्सुक आवाज़ें और मेहमानों की सधी हुई मुस्कानें इस बात का प्रमाण दे रही थीं कि ये शाम आम नहीं, बेहद खास थी। हॉल के अंदर कदम रखते ही क्रिस्टल के झूमरों की सुनहरी रोशनी पूरे वातावरण को शाही अंदाज दे रही थी। गोल टेबल्स पर सफ़ेद और सुनहरे थीम के साथ सज्जा, हर सीट पर नाम के साथ विशेष कार्ड और बीचों बीच सजा हुआ विशाल मंच जिस पर चमकते अक्षरों में लिखा था, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर सेलिब्रेटिंग विजन एंड लीडरशिप। मंच पर लगी LED स्क्रीन पर पूरे साल की उपलब्धियों की झलकियां दिखाई जा रही थीं। नई कंपनियों की शुरुआत, सफल डील्स, सामाजिक कार्य और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान। बैकग्राउंड में धीमा लेकिन प्रेरणादायक संगीत बज रहा था जो हर दिल की धड़कन को इस ऐतिहासिक पल से जोड़ रहा था। एंकर की गूंजती हुई आवाज़ जैसे ही हॉल में फैली, देवियों और सज्जनों, आज हम उस शख्सियत को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने विजन, साहस और नेतृत्व से बिजनेस की दुनिया में नई मिसाल कायम की है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा, कैमरे मंच की ओर घूम गए और हर नजर उस नाम का इंतजार करने लगी जो आज रात इतिहास बनने वाला था। ये सिर्फ एक ट्रॉफी देने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उन सपनों, संघर्षों और अथक मेहनत का उत्सव था जो किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर देते थे। मुंबई की वो चमचमाती रात अब अपने चरम पर थी। हॉल के अंदर लगभग हर टेबल भर चुकी थी। देश के नामी उद्योगपति, निवेशक और कॉरपोरेट जगत के बड़े चेहरे अपनी अपनी सीट पर विराजमान थे। सामने की पहली कतार में आर्यन अपने पिता धीरज रायचंद के साथ बैठे थे। उनके आसपास शहर के कई जाने माने बिजनेसमैन मौजूद थे, कोई टेक इंडस्ट्री से, कोई रियल एस्टेट से तो कोई इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ था। तभी बाहर अचानक हलचल बढ़ी। रेड कार्पेट पर एक के बाद एक तीन लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। पहली गाड़ी का दरवाजा खुला, बाहर उतरे सिद्धार्थ खुराना। डार्क ब्लू वेलवेट सूट, आंखों में ठंडी मगर आत्मविश्वास भरी चमक। उनके पीछे उतरी उनकी दादी उर्वशी खुराना, सिल्वर ग्रे साड़ी, मोतियों का सेट और चेहरे पर वही शाही ठहराव। तीसरे दरवाजे से उतरे सिद्धार्थ के बड़े भाई रण विजय खुराना, लंबा कद, सख्त चेहरा और पूरी तरह बिजनेस टाइकून वाला अंदाज। कैमरों की फ्लैशलाइट्स उनकी तरफ घूम गईं और एक के बाद एक मीडिया ने सवाल दागने शुरू कर दिए। सिद्धार्थ सर, इस बार भी आप अवार्ड के स्ट्रांग दावेदार माने जा रहे हैं। रण विजय सर, क्या खुराना ग्रुप इस साल एक और इतिहास रचने वाला है? उर्वशी दादी ने हल्की मुस्कान के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखा और धीमे से बोली, आज यहाँ सिर्फ नाम और खानदान की पहचान चलती है और हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। सिद्धार्थ की नजर भीड़ पर घूमी, फिर वो हल्का सा तिरछा मुस्कुराया। और कुछ लोग तो यहाँ आने की सोच भी नहीं सकते। उसके मन में सिर्फ एक ही नाम था, झलक। उसे पूरा यकीन था कि झलक यहाँ कभी नहीं आ सकती, ना उसका कोई बड़ा सरनेम, ना कोई खानदानी पहचान, ना कोई प्रभावशाली बैकग्राउंड। इस मंच पर वही लोग खड़े हो सकते थे जिनके नाम के आगे एक स्थापित पहचान हो। वे अंदर जाकर पहली कतार के पास अपनी सीट पर बैठ गए। उर्वशी दादी की आंखों में संतोष छलक रहा था। जिसकी कोई पहचान नहीं, उसका इस दुनिया में कोई स्थान नहीं। लेकिन तभी दूसरी गाड़ी आकर रुकी। बाहर उतरी नैना ओबेरॉय, गोल्डन गाउन में, बेहद रॉयल अंदाज में। उनके पीछे आए उनके पति ईशान ओबेरॉय, जो शहर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक थे, और उनके साथ थी उनकी बेटी आकांक्षा ओबेरॉय। आकांक्षा की एंट्री सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। पेस्टल शेड का गाउन, डायमंड ज्वेलरी जो सिद्धार्थ ने ही उसे दिलाई थी, कैमरे लगातार उसकी ओर घूम रहे थे। ओबेरॉय फैमिली आ गई है, मीडिया में हलचल मच गई। तभी एक पत्रकार ने आकांक्षा से सवाल किया, हमने सुना है कि एक बार फिर आपकी और सिद्धार्थ की शादी टूट गई है, इस पर आपका क्या कहना है? आकांक्षा की आंखें नम होने लगी, मानो आंसू छलकने को तैयार हों। लेकिन तभी उसकी मां नैना ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। उन्होंने पत्रकार को घूरते हुए कहा,
इसका जवाब हम आपको कल सुबह देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल सुबह तक आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। नैना का स्वर संयमित था, लेकिन भीतर गुस्सा साफ छलक रहा था। फिलहाल वे अंदर पहुंची और बड़े बड़े मेहमानों से हल्की मुस्कान के साथ मिलने लगी। नैना शहर का चर्चित चेहरा थी, सामाजिक और राजनैतिक हलकों में उनकी अच्छी पकड़ थी, इसलिए लोग उन्हें मान सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे और उनका आदर सत्कार कर रहे थे। अंदर हॉल में नैना और उनके परिवार को सिद्धार्थ के ठीक बराबर वाली सीटें ऑफर की गईं। आकांक्षा सीधे जाकर सिद्धार्थ से मिली और उसके ठीक बगल में बैठ गई। उर्वशी जी नैना के साथ बैठी, वहीं उनका बेटा वैभव रणविजय के साथ आगे पीछे वाली सीटों पर बैठ गया। पूरी पहली पंक्ति अब शहर के सबसे प्रभावशाली परिवारों से भर चुकी थी और सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या आज की रात सिर्फ एक अवार्ड की होगी या किसी छिपे हुए तूफान की शुरुआत भी यहीं से होगी?